मनुष्य के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो दो कला कम हो गई, सीढ़ी नीचे उतरना पड़ा। कोई कर्म करने की बात नहीं है, समय। इसलिए कहा समय का महत्व है कि समय के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है। विज्ञान के अंदर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है और धीरे धीरे अव्यवस्थित होती जाती है। नई से पुरानी अपने आप होती है, पुराने से नया बनाना पड़ता है। कोई दुनिया के अंदर पुराना खंडर बना सकता है, क्रिएट कर सकता है? खंडर अपने आप बनता है। मकान नया बनाते हैं, खंडर अपने आप बन जाता है। संसार का यह नियम है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहो, लेकिन ऊपर से नीचे अपने आप आती है। इसी तरह देवी देवताएं भी धीरे धीरे परिवर्तन होते होते सूर्य वंश से चंद्र वंश में आए, सतयुग से त्रेता युग में अपने आप आए हैं। क्योंकि कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहता है? एक घड़ी, दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है। और अमावस्या में कितना दिन रहता है? एक घड़ी। फिर उसकी पूर्णमासी की ओर यात्रा चलने लगती है। तभी कहा जाता है चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। कोई घड़ी ऐसी नहीं है जिस घड़ी के लिए हम कहे ये घड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर घड़ी परिवर्तनशील है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इस तरह से ये दुनिया धीरे धीरे बदलती आई और तीसरा युग आया जिसको कहा जाता है द्वापर। सत्य माना एकता, जहां संपूर्ण एकता थी। लेकिन जब तीसरा युग आया द्वापर, जहां से दो पुर, द्वा माना दो, दो पुर आरंभ हुए। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। जो सत्यता का समय था वो समाप्त हुआ और यहां से सत्यता के साथ असत्य मिक्स होने लगा। स्वास्तिका का हाथ जो ये निशान में था वो ये निशान में आ गया। ये निशान माना आशीर्वाद और ये निशान माना मांगना। क्योंकि असत्यता मिक्स होने लगी तो मतभेद होने लगे, और मतभेद होने लगे तो लड़ाई झगड़े होने लगे, और लड़ाई झगड़े होने लगे तो दुख अशांति आने लगी। और तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। इस संसार में जो भजन बने हुए हैं ना, हर भजन में मतलब है। ऐसे ही नहीं बनाए गए कि सतयुग और त्रेता युग जब सुख का समय था तब किसी ने भगवान को याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर सुख में याद करते थे तो दुख काहे को होता था। और तब भगवान से मांगना शुरू हुआ, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, है ना, ये मांगना आरंभ किया। इसीलिए उसको कहा द्वापर, जहां से द्वैत भावना शुरू हुई। सत्ययुग और त्रेता युग को कहा जाता अद्वैतता का युग, यहां से द्वैत शुरू हुआ। जो देवी देवता होकर के गए थे सत्ययुग और त्रेता युग में, उनके मंदिर बनाकर के पूजा करने लगे। क्योंकि भगवान का सत्य परिचय तो नहीं था, जैसे आज की दुनिया के अंदर कई महात्माओं के, संतों का भी मंदिर बना करके पूजा करते हैं। अब संतों का मंदिर क्यों बनाया गया? तो कहेंगे हमसे श्रेष्ठ थे वो, इसीलिए थे तो मनुष्य ही। ठीक इसी तरह द्वापर युग की आत्माओं से पूर्व सत्युग और त्रेता युग के देवी देवताएं हो गए तो उनकी यादाइश ताजा थी तो उनके मंदिर बना करके पूजा करने लगे। जो श्रेष्ठ स्थिति में थे बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो शास्त्र लिखने लगे, मंदिर बनाने लगे, पूजा पाठ की रीत रस्म रिवाज शुरू कर दिया। इसी युग में, द्वापर युग में ये सब शुरू हुआ है। सत्युग त्रेता में तो भगवान भगवती के रूप में थे, वहां तो भगवान को याद करने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए द्वापर युग में ये सब शुरू होता है। और जैसे ही द्वापर युग में सब शुरू होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे संसार आगे बढ़ा तो उसी को ही दूसरे शब्द में कहा जाता है कि रावण राज्य भी प्रारंभ हुआ। ये संसार के अंदर कुछ महान आत्माएं आई भगवान का पैगाम लेकर के, क्योंकि जैसे जैसे दुख अशांति बढ़ती गई, कलह क्लेश बढ़ता गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता गया, मतभेद बढ़ता गया, असत्यता बढ़ती गई, झूठ व्याप्त होने लगा, तो कुछ महान आत्माएं संसार में आती है। भारत से बाहर तीन महान आत्माएं आती है। सबसे पहले इब्राहिम आती है जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये तीन महान धर्म पिता इसी युग में, द्वापर युग में नीचे आते हैं। और भारत में हर स्टेट में कोई ना कोई महान आत्मा ने, संतों ने जन्म लिया। हर स्टेट में किसी ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, किसी ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यही हमेशा कहा हम भगवान का पैगाम लेकर के आए हैं, पैगंबर है। पैगाम एक जैसा ही था, कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता, हर धर्म के असली सिद्धांत एक ही है। लेकिन जिस समाज में ये लोग गए थे उस समाज की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए, वो प्रचार अलग अलग है, बाकी ओरिजिनल धर्म के सिद्धांत एक ही है, लेकिन प्रचार अलग अलग है। जैसे जहां इब्राहिम गए थे उस समाज की रचना कैसी थी, तो उस समाज के अंदर मनुष्य जीवन के लिए कोई सिद्धांत नहीं थे, तब उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत बताए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, जो आज भी उनके धर्म पुस्तक में लिखे हुए हैं। परंतु अफसोस उस धर्म के लोगों ने उसको समझा नहीं, और इसीलिए धर्म के नाम पर झगड़े आरंभ होने लगे, क्योंकि वो धर्म की बातें समझ में नहीं आई। ये मनुष्य बुद्धि की अल्पज्ञता का प्रतीक है कि वो समझ नहीं पाया। ठीक इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे उस समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उन्होंने भी कुछ बातें उस समाज के अंदर देखी। फार ईस्ट में गए तो जैसे जैसे ईस्ट में जाते गए उस समाज की व्यवस्था को देखते गए कि उस समाज में दो बातों की कमी देखी। कौन सी दो बातों की कमी देखी? पहली बात देखी कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है, और इतना हिंसक मनुष्य बनता जा रहा है, कंपैशन नहीं है, और कर्म भ्रष्ट होने लगे। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही दो बातों को फोर्सफुली कहा लोगों को, दया धर्म है, दया धर्म का मूल है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। और इसीलिए आज भी कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग, क्या खाते हैं? जो दुनिया में कोई नहीं खाते ना, वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी आपको कैसे पता। कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जैसे ही वहां गई तो बंबई की चौपाटी जैसे बहुत मशहूर है, जहां बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल्स लगे रहते हैं, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। हमारा एक कार्यक्रम था एक आइलैंड पर, तो गाड़ी पार्क करके हमको बोट लेना था। उस चौपाटी से गुजरना पड़ा 10 मिनट। जैसे ही उस चौपाटी से गुजरे और दोनों तरफ के स्टॉल्स को देखा, वो दृश्य मुझे कभी भूलता नहीं है। और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। कहां देखा तो रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं और बड़े तवे पर उसको रख करके फ्राई किया जा रहा है और छोटे पीसेस करके लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी बनी जा रही थी। कहां देखा तो बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे। कहां देखा तो कुत्ते का गोश्त बना जा रहा था, पकाया जा रहा था। और कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। ये दृश्य मुझे कभी भूलता नहीं है। और तभी महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस इस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। आप चाइना में चले जाओ, महात्मा बुद्ध के मंदिर आपको गली गली में मिलेगा, लेकिन इतना महात्मा बुद्ध को मानते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की नहीं मानते। जैसे भारतवासी गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते। इसी तरह ये महान धर्म पिताओं ने भी जो बातें कही, अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं है। मानते क्यों नहीं? क्योंकि समझा ही नहीं है, तो कहां से मानेंगे कि कहां आज मनुष्य पहुंच गया है। सोचने की बात है। इसी तरह जहां क्राइस्ट गए थे, वहां के समाज में उन्होंने क्या देखा? दो बातें देखी उन्होंने भी वेस्टर्न दुनिया के अंदर, और उसी दो बातों पर प्रचार किया। कौन सी दो बातें देखी? पहली बात देखी कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ है, पल पल वो झूठ बोल रहा है, सत्यता नाम की नहीं है। और दूसरा देखा कि मनुष्य के अंदर इतनी नफरत है। तब क्राइस्ट ने यही कहा, लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। ये दो वैल्यूज को उसने परमात्मा के बराबर का दर्जा दिया। सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है, लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। और प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया? उसको एक क्रॉस पर चढ़ा दिया। और कितना टॉर्चरिंग किया, कितना नफरतपूर्ण व्यवहार किया कि सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसलिए जहां जहां भी वो चले गए, गए थे व्यापार के लिए, भारत भी आए व्यापार के लिए, लेकिन यहां आने के बाद नफरत के बीज बोए गए, असत्यता झूठ का सहारा लिया गया, और राजाओं को प्रजाओं को लड़ाया गया, राजाओं को राजाओं से लड़ाया गया, और सारे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। नफरत के बीज ऐसे बोए क्या आज इतने सालों के बाद भी भाई भाई लड़ रहा है? किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं, किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं, लेकिन लड़ रहा है। क्या मिलता है उस लड़ाई में? मालूम नहीं। सोचने की बात है कि कितने गहरे वो नफरत के बीज बोए गए हैं कि किसी बात पर समाधान ही नहीं होता है। खाली भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूं मैं, आज दुनिया भर के अंदर 360 लड़ाइयां चल रही है, उन्हीं देश की बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश का दो टुकड़ा हुआ है। नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, और उन्हीं बॉर्डर्स पर भाई भाई लड़ रहा है। किस लिए लड़ रहा है कोई नहीं जानता है। कितने गहरे नफरत के बीज बोए गए। इसलिए कहा कि उस धर्म के लोगों ने इस बात को समझा नहीं, प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा और सृष्टि नाटक का चौथा भाग आया जिसको कहा गया कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिका का हाथ ऊपर उठता है। ऊपर उठना माना क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के साथ साथ अति अति में पहुंच जाती है, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार, अति में जब चला जाता है तब कहावत है कि अति निशानी है अंत की और अंत निशानी है नई आग की। जब अति में पहुंच गया तब इसी युग को दूसरे शब्द में कहा जाता है रावण राज्य। जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था। शास्त्रों में भी यह दिखाया है कि जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, और जहां रावण राज्य था वहां राम राज्य नहीं था। त्रेता युग में जब राम राज्य था तब वहां रावण राज्य नहीं था, और आज जहां रावण राज्य है वहां राम राज्य नहीं है। आज ये रावण राज्य क्यों कहते हैं इस दुनिया को? क्योंकि रावण राज्य कहां दिखाते हैं? लंका में, जहां चारों ओर पानी था। आज अगर पृथ्वी को लिया जाए तो तीन हिस्सा पानी है, एक हिस्सा जमीन, माना ये पूरी दुनिया एक टापू है, लंका है। और यही रावण राज्य है। क्यों? रावण के लिए कहा जाता है, रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा बुद्धिशाली इस संसार में कोई नहीं। विद्वान था, 10 इंसान जितनी बुद्धि रखता था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र उसको प्राप्त था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी लंका सोने की थी। और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा जिसकी तपस्या और भक्ति का भी गायन है। जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है ना, चारों ही रावण में थी, अर्थ बल बुद्धि और भक्ति, चारों ही रावण के पास थी। लेकिन उसके राज्य का सर्वनाश क्यों हुआ? दो बातों की कमजोरी थी उसके अंदर। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता, अनैतिकता जीवन में आ गई थी, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया भी रावण राज्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में उत्तम है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। आज हवा में उड़ने लगा है मनुष्य, पानी के भीतर तैरने लगा है, चंद्रमा तक पहुंच गया। कितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की है, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं है। मिसाइल पावर है, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र मनुष्य के पास भी बन गए हैं। मिसाइल पावर है। मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा अगर देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं। क्या पॉम्प एंड शो एंड ग्लैमर है इस दुनिया का कि रात्रि के समय में ऊपर से अगर देखा जाए, फ्लाइट से अगर देखा जाए, तो क्या सोने की लंका चमक रही होती है? और मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली गली में मंदिर हो गए हैं, खूब भक्ति कर रहा है, कितने व्रत नियम आदि कर रहा है, भक्ति भी कोई कम नहीं है। जीवन की जो चारों आवश्यकता है, आज मनुष्य के पास भी चारों ही है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन आज मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमजोरी आ गई है। कौन सी? मनुष्य भी अहंकार में चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज एक छोटे बच्चे का भी अभिमान माँ बाप के नाक में दम कर देता है, अनुभव है आप सबको। और दूसरा अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता, कि आज छोटी उम्र में भी किस तरह से चरित्र भ्रष्टता का कर्म करता है, आप सभी अनुभवी है, आप सभी ज्यादा जानते हैं हमसे। इसलिए कहा कि रावण राज्य नहीं तो क्या है। कहा जाता है कि रावण ने अपनी बुद्धि की शक्ति से चारों देवताओं को अपने महल में बांध के रखा था, सेवा करने के लिए उनको नौकर बनाकर रखा था, कि इंद्र देवता रावण के महल में पानी भरता था, अग्नि देवता उसके लिए खाना पकाता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था। आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से ये सभी देवताओं को अपने घर में बांध के रखा है कि नल का चालू करो तो इंद्र देवता आपके घर में पानी भरता है कि नहीं भरता है, गैस चालू करो तो अग्नि देवता खाना पकाता है। कोई मेहनत लगती है अग्नि जलाने के लिए? नहीं। और एसी का बटन चालू करो तो वायु देवता आपको पंखा हिलाता है ना? ये रावण राज्य नहीं है क्या? इसलिए कहा जहाँ राम राज्य था वहाँ रावण राज्य नहीं था, जहाँ रावण राज्य है वहाँ राम राज्य नहीं है, इसलिए रावण राज्य है। जहाँ हर इंसान सीता की तरह, सीता कहाँ थी? रावण जब उसको सम्मोहित करके ले आया तो अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखा। उस बगीचे का नाम था अशोक वाटिका। आज की ये सारी दुनिया भौतिकवाद जहाँ है, जहाँ सुख सुविधा का साधन है, ये अशोक वाटिका नहीं तो क्या? लेकिन अशोक वाटिका में सीता बैठी है शोक में। अशोक वाटिका है, भौतिक सुख सुविधा के साधन है, लेकिन उस भौतिक दुनिया में बैठे हैं हर व्यक्ति शोक में है, दुख में है, सीता की तरह। जहाँ उसको ये महसूस होता है मेरा कोई नहीं है, महसूस होता है कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई आपके बाजू में खड़ा नहीं है उस वक्त, और आपको लगता है मैं अकेला हूं। ठीक इसी तरह सीता की तरह, जहां सब कुछ होने के बावजूद भी एक अकेलापन उस अशोक वाटिका में। इसलिए कहा आज हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है। किसी को बुरी आदतों का बंधन है, किसी को बुराइयों का बंधन है। कलयुग जहां चरम सीमा पर है, और ऐसी चरम सीमा जिस बंधन में वो घुट रहा है, ऐसा बंधन है जीवन के अंदर। हर प्रकार की बुराई अति में है, जहां मनुष्य आत्मा अपने ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बन गया है। खाली कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं, विकारों का गुलाम बन गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, उसकी गुलामी में उसका चेहरा तो देखो कैसा बन गया है, कितना विकृति उसके जीवन में आ गई। और ये विकृति का कारण न खुद को जानता है न खुदा को जानता है। खुदा को भी कहां ढूंढ रहा है? आज मनुष्य आत्मा खुदा को तत्वों में ढूंढ रहा है। कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, गोबर की पूजा कर रहा, गोबर गणेश बनाकर गोबर की पूजा करता है। कितनी अधोगति हो गई मनुष्य की। कहां कहां भगवान का सत्य परिचय न होने कारण कहां ढूंढ रहा है इंसान। और इसीलिए यह कलयुग की हाइट्स हो गई है। जब कोई भी चीज अति में पहुंच जाती है तो उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन जब ये कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं कलयुग तो अजन बच्चा है, अभी तो 4,32,000 साल पड़े हैं। सोचने की बात है कि अगर 4,32,000 साल पड़े हो और यही स्थिति है अभी, 4 लाख तो छोड़ो, 32,000 साल भी छोड़ो, 32 साल ही ले लो, आने वाले 32 साल में क्या होगा। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना, गाते हैं ना ये गीत। एक और गीत भी याद आता है कवि प्रदीप जी का, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा, जो सोचा नहीं होगा वो होगा। और उस गीत के अंदर सारी कलयुग की अंतिम निशानियों का वर्णन है, जो निशानियां प्रैक्टिकल इस समय में दुनिया में दिखाई देती है ना। तो इसीलिए कहा कि वो कलयुग का समय, जब कलयुग के लिए ये गायन है कि कलयुग की अंतिम निशानियां जब आएंगी तो क्या होगा इस संसार के अंदर, तो उस समय क्या क्या होगा, वो सारा उस गीत में वर्णन किया गया है। मैं कोई सारी निशानी वर्णन करने वाली नहीं हूं, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कलयुग की अंतिम निशानियां क्या क्या है। लेकिन एक निशानी मुझे अच्छी लगती है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए, तो उसने लिखा है गरुड़ पुराण में कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं भरेगा, तब समझना कलयुग का अंत है। अब मनुष्य सोचता है 4 कुएं का पानी अगर एक में समा जाए तो क्या एक का पानी 4 में नहीं समाएगा, कलयुग के अंत में नहीं समाएगा, क्योंकि वो जड़ कुएं की बात नहीं है, चेतन कुएं की बात है कि आज एक मात पिता 4 बच्चे के पानी को अपने में समा लेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, सेटल करेंगे, शादी करेंगे, सब कुछ। लेकिन जब एक मात पिता को समाना आता है तो 4 कुएं समा सकते हैं, टन बनाएंगे, तीन तीन मास का टन बनाते हैं, और वो भी अगर नहीं जमा तो क्या करेंगे, वृद्धाश्रम ढूंढने निकलते हैं। कई लोग हमें भी कहते हैं आपकी संस्था इतनी अच्छी है, सब करते हैं आप लोग, एक वृद्धाश्रम क्यों नहीं खोल देते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, वैसे हमने एक वृद्धाश्रम खोला है, लेकिन आश्चर्य लगता है कि आज जिस मात पिता ने आपको बड़ा किया, आज उसी के लिए आपके घर में जगह नहीं, आपके दिल में जगह नहीं कि वृद्धाश्रम ढूंढने के लिए निकले हैं। नहीं तो मदर टेरेसा क्यों बन जाती थी, ऑर्डिनरी सिस्टर टेरेसा थी, मदर टेरेसा कैसे बन गई। वो कहा जाता है कि एक बार वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, और जब मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो एक पुष्ट रोगी को उसने देखा, किचड़े के डब्बे के अंदर पड़ा था, और जैसे ही देखा उसको तो चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस तरह से पड़ा था अंदर में, जो चूहे उसके शरीर को नोच नोच के खा रहे थे, इसलिए कराहने के सिवाय कुछ नहीं था। मदर टेरेसा ने जब देखा, उसको बाहर निकाला, उसको पूछो तुम अंदर कैसे गए, चला गया तो कहा जब से ये बीमारी हुई है तब से लेकर दुख के सिवाय कुछ नहीं देखा। और कल रात को मेरे बेटे ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया और कहा मर जा बुड्ढा, मरता भी नहीं है, मौत भी कैसी, आधा शरीर चूहों ने खा लिया, उसके बाद भी मुझे मौत नहीं आ रही है। वो समय और वो दृश्य था जो मदर टेरेसा का हृदय विदीर्ण हो गया और उसी समय उसने प्लेज लिया कि आज के बाद मेरा जीवन इन लोगों के लिए रहेगा। और तब से लेकर वो सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा बन गई। आज वो समय आ गया है जब माँ बाप बच्चों को खाने में हिचकिचाते नहीं है, बेचने में हिचकिचाते नहीं है, और बच्चे माँ बाप को किचड़े के डब्बे में फेंकने से हिचकिचाते नहीं है। इससे ज्यादा कलयुग और क्या देखना चाहते हैं? इसलिए कहा अब कलयुग कोई बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, बस बचा है, बस इतना सा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब ज्यादा समय, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रूफ है वो भी यही बताते हैं, जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ रही है, कई प्रकार की बीमारियां उससे क्रिएट हो रही है, ऑक्सीजन का सोर्स ही कटता जा रहा है। कुछ समय पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, उनसे बातचीत करते करते हमने उनसे पूछा जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने फॉरेस्ट होने चाहिए? तब उन्होंने कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। हमने उनको पूछा इस वक्त कितने फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गया तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब 11 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? और इसीलिए आप खुद भी महसूस करते डॉक्टर्स हो, कहा उन्होंने कि रात्रि के समय में ऑक्सीजन का लेवल खाली 2% हो जाता है वातावरण के अंदर, क्योंकि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचते हैं, इसलिए रात्रि में सिर्फ 2% ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए अस्थमा अटैक रात को आता है, हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग में सबसे कम ऑक्सीजन हो जाता है। इसलिए कहा कि ये हार्ट अटैक्स, ये बीमारियां क्यों आ रही है, ऑक्सीजन ही नहीं है। और अगर 9% हो गया तो ऑक्सीजन कितना रहेगा वातावरण के अंदर रात्रि के समय में? इसलिए उन्होंने कहा ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल हमारे हिसाब से। अब 11% से 9% होने में कितना टाइम लगेगा? प्राकृतिक इम्बैलेंस जो आप देख रहे हैं दुनिया भर के अंदर, के बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप शुरू हुए हैं 7 रेक्टर स्केल पर, 8 रेक्टर स्केल पर भूकंप आने लगे हैं, ज्वालामुखियां फट रही है, चक्रवात तूफान किस तरह से आ रहे हैं, सुनामी लहरें किस तरह से उत्पन्न हो रही है। ये प्राकृतिक इम्बैलेंस जो एक विनाश का महाकारण बनने वाला है। जापान के अंदर जब भूकंप आया, चारों ही तत्व एक साथ भूकंप में ना पृथ्वी हिली, भूकंप का केंद्र समुद्र में था तो समुद्र हिला, पानी तो धरती पानी, और उसी समय आग जो वहां के केमिकल रिएक्टर्स में आग लगी, तो अग्नि और वायु चारों ही तत्व एक साथ काम करने लगे। ठीक इसी तरह ये तो एक नमूना था, एक सैंपल था, लेकिन इस तरह दुनिया के अंदर जब ये पांचों तत्व हलचल करेंगे इम्बैलेंस के कारण, तो क्या हो सकता है, क्या महान परिवर्तन से हम नहीं गुजर रहे हैं? आज जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद के कारण जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खूनी नाहक खेल, जो मिसाइल्स बनाए हैं वो कोई रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, मैं एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी कि दुनिया में मिसाइल्स कितने हैं, तो उसमें लिखा था कि ये दुनिया को 35 बार खत्म कर सके या ऐसी 35 सृष्टि खत्म कर सके, इतने मिसाइल्स भरे पड़े हैं। अब ये कोई रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, और सारे मिसाइल्स कंप्यूटराइज कंट्रोल है, और अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन? चलो आप कहेंगे कंप्यूटर इतने प्रोटेक्टेड है कि वायरस अंदर जा ही नहीं सकता है वो कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन जो व्यक्ति उस कंप्यूटर के पास है उसके दिमाग में तो वायरस जा सकता है या नहीं जा सकता है? और अगर उसको सिज़ोफ्रेनिक अटैक आ जाए तो क्या करेगा? अगर उसको, क्योंकि वेस्टर्न दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा सिज़ोफ्रेनिक अटैक्स है, वेस्टर्न क्या भारत में कितने लोगों को सिज़ोफ्रेनिक अटैक्स आ रहे हैं, और सिज़ोफ्रेनिक अटैक आए तो वो क्या करेंगे? क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या होती है? मरना और मारना। समझेगा, दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो। कितनी देर लगेगी? जो आपने सोचा भी नहीं होगा। चारों ओर शांति, आप लोगों को लगेगा विनाश हो ही नहीं सकता, इतना संसार में शांति है कहां से होगा, लेकिन वो व्यक्ति के दिमाग में कब अटैक आना है और कब वो बटन दबाएगा, जहां सब शांति होगी वहां क्या हो जाएगा? इसलिए कहा परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, लेकिन अब यह समय हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए? तो भगवान ने जो गीता में वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब ऐसी सृष्टि हो जाती तो भगवान को भी संसार में आना पड़ता है, संसार में भी, भारत में, क्योंकि भारत वो अविनाशी भूमि है, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके, अब यही कहते हैं भगवान भी कि अब वी आर ऑल ऑन अ रिटर्न जर्नी पर है। अब ये रिटर्न जर्नी पर है तो ये समय क्या कह रहा है? भगवान सिर्फ दो बातें, जैसे वो महापुरुषों ने दो बातें कही लेकिन उस समाज के लोगों ने माना नहीं, ऐसे भगवान भी सिर्फ दो बातें कहते हैं लेकिन अफसोस कि आज के समाज के लोग भी उसको नहीं मानने को तैयार है, स्वीकार करने को तैयार नहीं। कौन सी दो बातें कहते हैं भगवान? पहली बात कहते हैं आत्मशुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात सुनते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं, बहन जी अगर सारे लोग पवित्र बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे ये दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको मालूम है कैसे दुनिया चलानी है, हम उसकी चिंता क्यों करें? कुछ समय पहले मेरा एक कार्यक्रम था, सप्ताह का कार्यक्रम था एक शहर में, बहुत सुंदर कार्यक्रम चला, काफी लोग आते रहे, हर रोज शाम को वो प्रवचन माला चलती रही। अंतिम दिन अनुभव की लेन देन का था, एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए अपना अनुभव सुनाने के लिए और कहने लगे, पहली बार मैंने सुना ब्रह्मा कुमारियां क्या कहना चाहती है। आज दिन तक उनसे हम दूर भागते रहे क्योंकि उनके बारे में समाज के अंदर कुछ गलत फहमियां फैली हुई है, लेकिन आज जब उनकी बातें सुनी तो लगा 100% करेक्ट बोल रही है, बहुत सत्य बोलती है। हमने पूछा ऐसी कौन सी बात समाज में फैली है जिस कारण आप दूर भागते रहे, तो कहने लगे समाज के अंदर उनके लिए यही कहा जाता कि ये लोग भाई बहन बना देती है। आप लोगों को भी कईयों ने कहा होगा, वहां जा रहे हो ठीक ठाक वापस घर आना। अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाने की, हम किसी को नहीं बनाते भाई बहन। आप जब मंदिर में जाते हैं ना, एक प्रार्थना हर एक गाता है, कौन सी प्रार्थना? हर एक ने ये प्रार्थना जरूर गाई होंगी, तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाई है कि नहीं गाई है? गाई है, या सिर्फ भाइयों ने गाई है कि माताओं ने कुछ और गाया है कि मेरे पति के माता पिता तो मेरे सास ससुर, कभी भगवान को कहा ऐसा? जब आप ये प्रार्थना गा रहे थे तब आप कौन बन गए थे? कौन बन गए थे? ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी, तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें? हम तो ये भगवान का संदेश दे रहे हैं, करना न करना, मानना न मानना आपका है, आपके ऊपर है। फिर भगवान को दोष नहीं देना हमको बताया क्यों नहीं, ये समय की पुकार थी। अब तक तो भगवान कहने के लिए नहीं आए थे ना, ये समय की पुकार है। चलो ब्रह्मा कुमारियों को भी साइड में रखो, शास्त्रों को भी साइड में रखो, समय क्या कहता है। आज नंबर वन पर जो बीमारी संसार में चल रही है कौन सी है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। समय भी कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, आत्म संयम को धारण करो। शास्त्र के अंदर ये बातें आती है, अगर शास्त्र को आप मानते हैं तो मैं शास्त्र की बातों को लेकर कहती हूं कि रामायण के अंदर सीता जी को सम्मोहित करके ले आए रावण, अपने बगीचे में रखा, अपने महल में नहीं रख सका। क्यों? सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? कौन से शस्त्र थे? क्योंकि आज की दुनिया के अंदर को भी अगर उसको रावण राज्य कहते तो आज भी आप हर दुनिया का हर न्यूज़पेपर उठाकर देखो, एक खबर हर रोज छपती है। कौन सी खबर हर रोज छपती है? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, छपते हैं कि नहीं छपते? प्रैक्टिकल में कितनी घटनाएं घटती होंगी, छपते एक दो है। जब आप ये खबर पढ़ते हैं आपका विवेक क्या कहता है, आने वाले समय में ये घटना बढ़ेगी या कम होगी? क्या होगा? बढ़ेगी। और उस समय आत्मरक्षा का साधन क्या? रावण जैसा रावण, इतना शक्तिशाली, जिसने श्री राम